नमस्कार, मैं उमाशंकर अग्रवाल आप सब आदरणीय व्यापारी बंधुओं का बहुत प्रेम से स्वागत करता हूं। हम इस समय मार्गदर्शन कार्यक्रम में यहां बैठे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विदर्भ सब जोन इंचार्ज आदरणीय राजयोगिनी बी के पुष्परानी दीदी जी, जो हमारी समस्याओं का, हमारे प्रश्नों का यहां पर उत्तर देंगी। दीदी जी के विषय में बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम ये बताना चाहेंगे कि आदरणीय दीदी जी ने बाल्यकाल से ही, आयु के 14 वर्ष से ही अपना जीवन समर्पित कर दिया ब्रह्म कुमारी संस्था के लिए। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि आदरणीय दीदी जी ने ब्रह्मा बाबा का वो सानिध्य पाया है, वो कृपा पाई है, उनकी वो शक्ति पाई है जिस शक्ति के सहारे दीदी जी ने अपने जीवन के 70 वर्ष यहां व्यतीत किए हैं। और इन वर्षों में समाज के विभिन्न अंगों में जाकर दीदी जी ने बहुत ही रचनात्मक कार्यक्रम यहां पर चलाए हैं। एक सेवा केंद्र था, आज बढ़कर सैकड़ों की संख्या में केंद्र हुए हैं, शाखाएं उपशाखाएं बनी हैं। ये दीदी जी के पुरुषार्थ का ही परिणाम है। हम आदरणीय दीदी जी को नमस्कार करते हैं। हमारे नागपुर शहर के विभिन्न व्यवसाय से जुड़े, व्यवसाय के विभिन्न उपकरणों को लेकर चल रहे प्रतिष्ठित व्यापारी समय मार्गदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ये अपना प्रश्न दीदी जी के सामने रखेंगे और दीदी जी उनका समाधान करेंगे। सबसे पहले अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे विक्रम बोहरा।
परिवार के साथ रहते वक्त भी व्यापार की समस्याओं की तरफ मन लगा रहता है, उसके लिए क्या करें?
व्यापार और परिवार दोनों का हमें बैलेंस रख करके चलना है। परिवार में रहेंगे, कार्य भी करना ही है, परंतु उस समय जब आप व्यापार के अंदर हैं तो बुद्धि व्यापार में रखिए। जिस समय में व्यापार का कार्य सोच में नहीं है उस समय आप अपने परिवार के साथ रखिए, नहीं तो परिवार में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, उस समय आपका दिमाग दूसरी तरफ रहेगा तो आप घर के ऊपर अटेंशन नहीं दे सकेंगे, परिवार वालों को आप साथ पूरा नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमारे अंदर वो एक कला होनी चाहिए, घर में है घर का सोचे, व्यापार के लिए जाए उस समय उसका सोचे, अर्थात जिस घड़ी जिस कार्य की जरूरत है उस समय हम उसको सोच सके। हैं दोनों ही जरूरी, पर जिस समय जो कार्य करें वहां हमारी बुद्धि प्रेजेंट हो। हाँ, कर्म करते परमात्मा की याद उसके साथ जरूरी है। कहा जाता है हथ कारणे दिल ईश्वर की तरफ, वो कला उसके अंदर भरेंगे तो हम देखते हैं कि परिवार भी बहुत अच्छी रीति से संभलता है और व्यापार भी हमारा बहुत अच्छी रीति से होता है। इसलिए परमात्मा को बुद्धि से अपना साथी बनाए। व्यापार में ज्यादा बुद्धि जाती क्योंकि मन में रहता है ज्यादा मिले कैसे मिले क्या करो, परंतु अपने भाग्य को भी अपने साथ रखिए। कर्म करना पुरुषार्थ करना है, परंतु जो भाग्य में है वो जरूर मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सत्य की जीत है, सच्चाई से व्यापार करो। इसलिए कार्य करते परिवार में रहते ईश्वर को अगर अपना साथी बना करके रखेंगी तो आपको कम विचार चलाने के बाद भी परमात्मा वो शक्ति देगा जो आप कार्य में सफलता पा सकेंगे।
परमात्मा को साथी बनाइए, उनके साथ मित्रता स्थापित कीजिए। जब परमात्मा आपके मित्र बन जाएंगे, भगवान आपके मित्र होंगे, तो कोई भी समस्या फिर आपके सामने समस्या नहीं होगी। जब आप परिवार के साथ होंगे तो केवल परिवार के साथ, और जब व्यापार में होंगे तो बहुत सफल व्यापारी के रूप में। दूसरे प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं लक्ष्मीकांत कोठारी।
ओम शांति। दीदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हम अपना कारोबार बच्चों को दे देते हैं, हमारी पूरी पूंजी उसी कारोबार में लगी रहती है, कुछ समय के बाद में हम अपने आप को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं, क्या ये निर्णय हमारा सही है या गलत?
अपना कार्य बच्चों को समय अनुसार सौंपना ही है, क्योंकि हर चीज के लिए कुछ सीमा होती है, कार्य करने की भी सीमा है, आयु की भी सीमा है। परंतु कहा जाता है अपने बच्चों के सिर पर हाथ जरूर रखिए, छोड़ नहीं दे, केवल हाथ का अर्थ कंट्रोल करना नहीं, हाथ का अर्थ है प्यार दीजिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पिता का काम है उनको अपना समानता के साथ चलाना। आज कहां काम गलती कर बैठते हैं कि बच्चों के ऊपर या तो प्रेशर देते हैं या तो छोड़ देते हैं। ये दोनों बातें अगर हो जाती है तो फिर ये समस्या अपने जीवन के लिए पैदा हो जाती है और उलझन में आ जाते कि क्या करें। परंतु अगर जो व्यापार करते भी आपके साथ आपका बच्चों से प्यार था, जैसे उनको साथी बना के रखा था, फिर भी आप उनके साथी बन करके रहे, तो बच्चे भी आपको रिगार्ड भी देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में आ जाएगा, अनुभव में आएगा कि बड़ों की गाइडेंस से हमें ठीक राह मिलती है। ज्यादा अटैच भी ना हो, छोड़े भी नहीं, इसको कहा जाता है साक्षी अवस्था। लाइट भी रहे। बच्चे को जब दौड़ना सिखाया था, पहले उंगली पकड़ के चलाया, फिर उसको दौड़ने चलाया, परंतु दौड़ने समय में छोड़ दिया, परंतु ध्यान रखा कि कहीं बच्चा गिर तो नहीं रहा है। वही स्थिति इस समय में होती है, एक तो बच्चे को समान और उसके ऊपर प्यार का वर्षा, साथ में उनके पर ध्यान, ताकि वो अलग महसूस न करे, माँ बाप को बच्चा बोझ महसूस न करे। जब वो बोझ महसूस करता है तब ये समस्या खड़ी होती है।
दीपक कल्याणी, निवेदन है कि आप अपना प्रश्न प्रस्तुत करें।
ओम शांति। मेरा प्रश्न ये है कि शिक्षित होने के बाद बच्चे पारिवारिक व्यवसाय में जुड़ना नहीं चाहते और अब संयुक्त परिवार भी रहे नहीं है, तो व्यापार बंद करने की नौबत आती है, क्या करें?
उसके लिए पहले बच्चे की रुचि को आप जरूर देखना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं बच्चा व्यापार में रहे, वो चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, वो चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, तो उसकी इच्छा के अनुकूल कार्य करना जरूरी हो जाता, क्योंकि जहां रुचि होगी वहां वो बच्चा सफलता पाएगा। तो इसलिए परिस्थिति अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ता है।
दीदी जी का ये बहुत ही सुंदर उत्तर था कि हम बचपन से बच्चे को पहचाने कि उसकी दिशा कौन सी है। यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो जबरदस्ती व्यापार व्यवसाय में न लगाएं, और तब तक आप अपने व्यापार व्यवसाय का सुनिश्चित निर्धारण करें कि उसका क्या करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजेश धर्मठो।
विज्ञान इतना एडवांस होने के बावजूद भी कुछ पढ़े लोग लिखे लोग अंधविश्वास क्यों रखते हैं?
क्योंकि उनके अपने आत्मविश्वास की कमी है और इसलिए वो अंधश्रद्धा की ओर चले जाते हैं। अगर हमें स्वयं पर विश्वास है कि मेरा भाग्य अच्छा है, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो दूसरों से पूछना ताछना उस चक्कर में जाएगा ही नहीं, जहां खुद में डाउट होता है आगे मेरा क्या होगा, ये कठिनाई किस कारण से आई, या तो सोचते हैं किसी ने कुछ किया तो नहीं। कई केस अंधविश्वास के ऊपर हो चुके हैं, अंधश्रद्धा के कारण हुए हैं। होती है शारीरिक व्याधि, बुद्धि में रख लेते हैं कि किसी ने कुछ किया है और उसके पीछे लगे रहते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है और कई बार तो बेचारे मृत्यु की शैया पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए, अगर बीमारी है डॉक्टर को दिखाए। शारीरिक व्याधि डॉक्टर दूर करेगा, न कि ये तांत्रिक विद्या को ठीक करेगी। और मैं जब सही कर रहा हूं, मुझे दूसरे से भाग्य पूछने की दरकार नहीं है। कर्म कर्म का फल, इसको बुद्धि में रखे। कहा जाता है बीज बोया बबूल का आम कहां से खाएं। अगर मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, लाख यत्न करूं आम नहीं मिलने वाला। सावधानी हमें अपने कर्मों की रखनी चाहिए। मैं वो कर्म करूं जो मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरा भविष्य, मेरी प्रारब्ध अच्छी रहे। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को विशाल बना करके, कर्मों की गति को जान करके उसके ऊपर स्थिर रहे, उस पर निश्चय रखे। जिसको कर्मों के गति के ऊपर, कर्म फल के ऊपर विश्वास है, वो इस बातों में नहीं जाएगा।
आत्मविश्वास की कमी अंधश्रद्धा का कारण है। दीदी जी ने कहा कि आत्मविश्वास पैदा करें, विचारों को परिष्कृत करें। कैसे हो आत्मविश्वास पैदा, ये इस केंद्र में बताया जाता है कि आत्मा को जाने। आत्मा को जानेंगे तो आत्मविश्वास स्वतः ही उत्पन्न होगा और हम इन सारी ही परिस्थितियों से, अंधश्रद्धा, निराशा, नकारात्मक भाव, इन सब से अवश्य ऊपर उठेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हरीश फुलवानी।
ओम शांति। व्यापार में भारी बाधा लगती है, उसका सहज रूप से कैसे समाधान करें?
हर बात के लिए पुरुषार्थ है, हर बात के लिए अटेंशन भी रखना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम अपने नेचर को इजी बनाएं, भारी न करें। भारी हम जब कर लेते हैं तो दिमाग के ऊपर वो बोझ आ जाता है, वो सोच आ जाते हैं, वो विचार आ जाते हैं, वो विचार आते आते और हमें भारीपन बढ़ता जाता है। हमको अटेंशन रखें, सावधानी रखें, पर व्यर्थ विचारों से अपने आप को भारी नहीं करो। कार्य करना है, एक्टिव होना है, मेहनत भी करनी है। हम आपको बताएं, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जिनके संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, उनका पहला नाम लेखराज था, प्यार से सब दादा लखीराज बुलाते थे। वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, उनका व्यापार राजाओं तक था। राजाएं उनको एक व्यापारी करके नहीं देखते थे, मित्र समझ करके अपने बाजू में बिठाते थे। इतना उन्होंने व्यापार को बढ़ाया। और दूसरा, उन्होंने व्यापार को कैसे बढ़ाया, सच्चाई के साथ व्यापार किया। उसमें कुछ भी, एक रत्ती भी उन्होंने मिलावट या अधिक लेने का हिसाब झूठ सच नहीं किया। उनकी सच्चाई के कारण उनके व्यवहार के ढंग के कारण राज्यों तक इतना समीप हो पहुंच सके। भारी भी हम कब होते हैं? जब हम व्यापार में सच्चाई को छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ जब ऊपर नीचे कर देते हैं जो कानून के विरुद्ध होता है, वहां हमारा सिर भारी होता है। क्योंकि कई बारी कानून एक तरफ रह जाता है, वो उसको हम डोंट केयर करके और अपना कार्य चलता है करके नहीं। कानून क्या कहता है? कानून सिखाता है सच्चाई से व्यापार करो। तो जो सच्चाई से व्यापार करेगा उसको कोई टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि उसको जिंदगी में झूठ फिर बोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर हमने झूठा व्यापार किया, उसको छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, उसके लिए वो ध्यान देना पड़ेगा। वो ध्यान देते हुए हमारा दिमाग भारी हो जाएगा। तो सच्चाई, ईमानदारी, इससे अगर व्यवहार व्यापार हम करते हैं तो वो इतनी तकलीफ मन को नहीं आ सकती है और हम भारी नहीं हो सकते।
सच्चाई और ईमानदारी इसे सामने रखते हुए अपने व्यापार को करें, विचारों से उसको सुलझाने का प्रयास करें जो बाधाएं सामने आ रही हैं। तो जैसा दीदी जी ने कहा कि सत्य का आचरण लेते हुए यदि हम व्यापार करेंगे तो सुनिश्चित रूप से सारी बाधाएं तिरोहित हो जाएंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोपाल राठी जी,
सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आज व्यापार में अनहेल्थी कंपटीशन और भ्रष्टाचार का चल रहा है, तो उसका हम सामना कैसे करें?
एक राजा ने एक बार ऐलान किया था, एक टैंक के अंदर बोला रात को एक एक दूध का लोटा डालो। उम्मीद थी कि दूध का भरावा होगा। सवेरे जो एक व्यक्ति के मन में आया, सब दूध डालेंगे, मैं एक पानी डालूंगा तो क्या होने वाला है। ऐसे करते करते वो कुविचार का प्रभाव औरों पे भी पड़ता रहा। रिजल्ट ये हुई, दूध की बजाय पानी से भर गया। अगर हमारे मन में थोड़ा भी ये ढीलापन है, सारा समाज अगर ऐसा कर रहा है, समाज के साथ कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो। वो ऐसा कर रहा ना, मैं भी ऐसा करूं। हम बहती गंगा में हाथ धोने का न करें, परंतु उसको ब्रेक दे। ब्रेक देने के लिए स्वयं से शुरुआत करें, क्योंकि भ्रष्टाचार का, मिलावट का, बेईमानी का काम कारण क्या है? लोभ। पहले हमारे मन में लोभ वृत्ति आती है, वो लोभ वृत्ति का क्या परिणाम होता है वो आप सब देख रहे हैं। लोभ न हो, परंतु व्यापार से लाभ जरूर हो। परंतु आज क्या हो गया, लाभ के बजाय लोभ, कभी फंसते हैं, कभी छूटते हैं, कभी चिंता में रहते हैं, कभी खुशी में रहते हैं। तो आप स्वयं उसके अंदर पक्के रहे। ऐसा नहीं है कि आज रिश्वत के बिना काम नहीं चलता। वास्तव में एक तरफ हम बोलते रहते हैं रिश्वत चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको बंद करो। कई प्रकार के हम प्रयास करते हैं भ्रष्टाचार बंद हो, बंद हो, बंद हो। परंतु क्या हम उसमें नहीं अपना वो कर रहे हैं? आज कोई भी कार्य कराना है, रिश्वत हम ही देते हैं, ले लो, हमारा काम जल्दी करो। तो लोभवश, जल्दीबाजी के कारण हम खुद देते हैं। जब हम देते हैं तब तो वो लेते हैं, हमारी जेब से निकालने के लिए कोई नहीं आता है, हाथ आपके बढ़ते हैं। तो इसलिए हम ही ना दें, ठीक है आपका काम 2 दिन के बजाय 4 दिन में होगा, धीरज रखें।
अनुचित स्पर्धा और भ्रष्टाचार का अंग हम न बने, यथासंभव पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें। 4 दिन बाद मिलने वाला रिजल्ट 8 दिन में मिलेगा, उसकी चिंता न करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। दीदी जी का ये समाधानकारक उत्तर। और इसके बाद हमारे बीच उपस्थित नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अर्जुन दास आहूजा, कृपया अपना प्रश्न प्रस्तुत करें।
ओम शांति। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में व्यापार व्यवसाय एक रीढ़ की तरह है। बिना व्यापार के कोई देश भी नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी व्यापारी जो है आज मैं देखता हूं उपेक्षित है कई वर्षों से। तो ऐसा क्यों है? क्या व्यापारियों को अपनी प्रतिष्ठा पाने का अधिकार नहीं? व्यापारी अपनी प्रतिष्ठा कैसे पाए, ऐसा मेरा आपसे प्रश्न है।
दूसरों से अपेक्षा करें कि हमें वो मान दे, इज्जत दे। इसका कारण है हमारे मन में सूक्ष्म अभिमान, जिसको दे अभिमान कहा जाता है। कहां अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, कहां अपने कर्मों का अभिमान होता है। वो जब आता है तो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि उतना मान इज्जत रिगार्ड दे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता भी है, पर ये प्रॉब्लम कब महसूस होती है? जब हम उससे ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा आकाश में उड़ना चाहते हैं। कहा जाता है कि पंछी की भी ऊंचाई तक उड़ने की मर्यादा है, भले खुद को पंख। तो इसी तरह से हम एक मान इज्जत सब मिलता है, परंतु हमारी अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, ये हो वो हो वो। वो ना रखते हुए कार्य करते चलो, आगे बढ़ते चलो, और व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है, चलता है और सदा ही चलते रहेगा। ऐसी हमारी भी शुभ भावना शुभकामना है, क्योंकि जब एक बताया बुद्धि से, सच्चाई से, प्रेम से उनके साथ व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे को उतना रिस्पॉन्स देते हैं। पर आज कंपटीशन का युग है, ये भी जरूरी बात है। एक ये भाव बेच रहे तो मैं ये बेचू, आदि आदि से कई बातें होती है। अगर जो सच्चा व्यापार चिंता नहीं करेगा, अगर एक व्यापार कस्टमर आपसे कुछ ना लेके आगे चला गया, आप अपनी सच्चाई का आपने में बता दिया रेट, आगे जब वो देखेगा कि कुछ दूसरा ही बात हो रही है, तो लौट करके भी आपके पास आएगा और आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा, धंधा भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। पर इसके लिए हम अपेक्षा करना, हिम्मत हारना, घबराना, ये कमजोरी की बातें नहीं, अपने मंजिल की ओर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, तो सफलता आपके चरण सदा चूमेगी।
सफलता भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, दीदी जी का ये आशय था। सारे संसार की सरकारें इस बात को जानती है कि व्यापार के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता, ये मान लेना ही एक बहुत बड़ा सम्मान है व्यापारियों के लिए। ये दीदी जी का आशय था, अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में ईमानदारी की ओर दीदी जी ने संकेत दिया, ईमानदारी को रेखांकित किया, वहां हम कॉम्प्रोमाइज न करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और आमंत्रित करते हैं विजय हरडे जी को।
ओम शांति। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डेवलप करें?
जब हम अपने आप को पहचानते हैं, फिर परमात्मा कौन, उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, उसको पहचाने। पहचानने के साथ अपना बुद्धि का कनेक्शन प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ लगा। अपना साथी उनको बनाए, जैसे समझो आपको कहीं जाना है, आपका रास्ता वो देखा हुआ नहीं है, तो आपको उधर जाने में थोड़ा हिचकिचाट होंगी, मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, खुद के पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। परंतु अगर एक बड़ा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति आपको मिल जाता है, उनके साथ आप चल पड़ते हो, तो वहां आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बढ़ जाता है। इसी तरह से जब हम परमात्मा से नाता तोड़ देते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, तो वहां कॉन्फिडेंस अपने आप में भी कम हो जाता है। है सूक्ष्म चीज पर इफेक्ट बहुत बड़ा करती है। जो भी कार्य करें, जो भी सोचे, पहले बीच में उनको रखें, परमात्मा की स्मृति को रखें, संबंध जोड़ करके रखें। सही रीति से अगर आप जोड़ेंगे तो आपके हाथ से सदा सही काम होंगे। हमको टचिंग देता है, जहां नुकसान होने वाली बात हो ये मत कर, पर वो हमारी रक्षा कब करेगा? रक्षक तो कहते हो, वो रक्षा कब करेगा? जब आप अपनी बुद्धि उनको सौंपेंगे ना, उनका साथ बनाएंगे ना, तो हमें कदम कदम पर सावधान करेगा, श्रेष्ठ कर्म करने की हमारे में शक्ति देगा। जितना जितना हम श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे, उतना हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा, और कोई भी कार्य करने से बढ़ता है। एक खाना भी अच्छा बनाना है, बनाते बनाते जब एक्सपर्ट होते तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। व्यापार में आपका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा है? जब आपने किया है। ऐसे ये भी हम करेंगे, श्रेष्ठ कर्म, ठीक कर्म सब करते जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा।